नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयिर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोये सौवसाहूण एषो पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पञ्च परमेष्टि भगवान् की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की ठीक है प्रश्न नंबर 25वां आया है। अनंत चतुष्टय किसे कहते हैं? उत्तर है चार घाती कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले गुणों को अनंत चतुष्टय कहते हैं। चार घातिया कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले गुणों को अनंत चतुष्टय कहते हैं। घातिया कर्म जो जीव के अनुजीवी गुणों को घात करते हैं वे घातिया कर्म कहलाते हैं, और जीव के प्रतिजीवी गुणों को घात करने वाले अघातिया कर्म कहलाते हैं। घाती कर्म को नाश किए बिना अघाती कर्म को नाश नहीं कर सकते, ये नियम है। इसलिए घाती कर्म को जो नाश करते हैं उनको पहले चार गुण प्रकट होते, और जिनको एक साथ गुणों को प्रकट होते हैं तो एक साथ भी हो सकता है, लेकिन समय भेद की अपेक्षा से फिर भी देखें तो पहले केवल ज्ञान ही होता है और घाती कर्म ही नष्ट होते हैं, और पश्चात अघाती कर्म नाश को प्राप्त होते हैं। गुणस्थान का उल्लंघन एकाएक ही हो नहीं सकता, बारहवें गुणस्थान से एकदम चौदहवें में चले गए ऐसा नहीं होता, बारहवें से तेरहवें में ही जाएंगे, तेरहवें में जब जाएंगे तो घाती कर्मों का नाश कहाँ हुआ? बारहवें में हुआ, बारहवें गुणस्थान में ही हुआ। और जिनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान भी प्राप्त करना है और मोक्ष भी जाना है वो कैसे कर्मों का नाश करेंगे? बारहवें में आघाती भी नाश करेंगे क्या? नहीं। इसलिए गुणस्थानों की व्यवस्था के माध्यम से कर्मों का नाश किस प्रकार से होता है ये समझाना पड़ा। अंतर्मुहूर्त में जिस समय केवल ज्ञान हो रहा है उसी समय निर्वाण की प्राप्ति भी हो सकती है, पर केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान और निर्वाण ये एक काल में नहीं होते, समय भेद रहेगा। पहला केवल ज्ञान होगा, फिर बाद में निर्वाण की प्राप्ति होगी, यानी निर्वाण की प्राप्ति होते समय तो आघाती कर्मों का नाश करेंगे और केवल ज्ञान प्राप्त करते समय घाती कर्मों का नाश करेंगे। घाती कर्मों का नाश तो 12वें में ही होगा, मोक्ष चाहे बाद में हो चाहे उसी अंतर्मुहूर्त में हो। घाती कर्मों का विनाश तो 12वें में ही होगा, आघाती कर्मों का विनाश 13वें-14वें में ही होगा, ये नियम है। कितनी भी जल्दी मोक्ष जाएं, कोई भी उपसर्ग के काल में जाएं या एकाएक जाएं, किसी कारण से अंतर्मुहूर्त आयु भले ही हो, 8 साल अंतर्मुहूर्त के भीतर भी मोक्ष जाता है जीव, तो जघन्य आयु उसकी उतनी है, मध्यम आयु कह सकते उसको, मध्यम आयु। कर्म भूमि में जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि, और मध्यम आयु 8 साल अंतर्मुहूर्त के कह सकते हैं। 8 साल अंतर्मुहूर्त बड़े बने बिना किसी को भी केवल ज्ञान हो नहीं सकता, ये सिद्धांत है। कितना बड़ा होना पड़ेगा? 8 साल अंतर्मुहूर्त। 8 साल का बच्चा मोक्ष जा सकता है? 8 साल का, और वह दीक्षा लेने लग जाए तो माता पिता समझाते हैं, इतना जल्दी क्या दीक्षा ले रहा है, खेल है क्या ये? आप कहते हैं खेल है क्या? और वो लड़का दीक्षा लेने वाला कहता है ये जेल है क्या? हम जेल से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। वो आपसे पूछ रहा है ये जेल है क्या? आप कह रहे हैं ये खेल है क्या? 8 साल अंतर्मुहूर्त के पश्चात भी मुनि दीक्षा ले सकता है, जैन धर्म में आया है, सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख है। 8 साल का बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत बन सकता है। अरहंत, अरहंत ही नहीं, उसकी आयु यदि उतनी ही है तो अंतर्मुहूर्त को पूर्ण करके उसमें केवल ज्ञान प्राप्त करके आघाती कर्मों को भी नाश करके मोक्ष जा सकता है। तो आत्मा में कितनी बड़ी शक्ति है देखो, इसके लिए कोई उम्र की जरूरत है क्या? आप लोगों ने इसलिए दीक्षा नहीं ली क्योंकि हमारे धर्म करने की और दीक्षा लेने का ये टाइम नहीं है। जब सभी बाल सफेद हो जाएंगे और दांत जब गिरने लग जाएंगे तो दीक्षा ले लेंगे, और नहीं भी ले पाए तो संलेखना तो ले ही लेंगे। संलेखना बहुत आसान समझते हैं संलेखना को, देखो ना, संलेखना को भी बहुत आसान समझ रखा है। मरण के काल में हरण सिद्ध करना, प्राण छोड़ना, ये संलेखना है। ऐसा है संलेखना? संलेखना किसको है? और ऐसे लोग भी संलेखना के लिए चेष्टा करते हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं समझा, कभी स्वाध्याय नहीं किया, कभी प्रवचन नहीं सुने, कभी कोई धर्म तत्व का चिंतन मनन नहीं किया, वो भी धर्म के संबंध में चर्चा करता है। क्या करता है? हमको संलेखना अंत में लेना है, धर्म तो कभी भी कर सकते हैं इसलिए हम अंत में लेंगे। तब तक क्या करोगे? तब तक आराम से रहेंगे, चैनी में रहेंगे, मरण के काल में धर्म करना है। तो धर्म इतना सस्ता है क्या कि मरण के समय में ही आपको प्राप्त हो जाए? वो क्या चाय है? सुबह उठते ही मिल जाए एक कप और जब कभी भी बना करके उसको पी लो, ऐसा नहीं। धर्म को, हाँ, ये अवश्य नियम है उसके पीछे, 8 साल अंतर मुहूर्त के पहले तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये शास्त्र की बात है। परंतु इसको आपने कितना उत्कर्षण किया उसका, शास्त्र कह रहा है बचपन में धर्म होता है मोक्ष भी होता है, और अपन ने क्या बनाया, बचपन की जगह 55 बना दिया उसको, 55 के बाद ही देखेंगे तो ये नहीं है। शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम करने के लिए देर नहीं करना चाहिए। संसार कार्य करने के लिए बहुत देर करना चाहिए, बहुत देर, संसार का कोई भी काम हो, बाद में देखेंगे, जल्दी शादी कर लो, बाद में देखेंगे। क्यों बाद में, क्यों, अभी कोई जल्दी नहीं हमको। पर अभी तक अपन ने क्या कहा, धर्म करो ना, बाद में देखेंगे, शादी करो ना, हाँ कब करूं यानी भगवंतों ने जो उपदेश दिया है हम उल्टा ही चल चुके अभी तक, और उल्टा चलने का कारण क्या बना कि भगवान की वाणी को अच्छी तरह से हमने सुना भी नहीं, चिंतन भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया, और धर्म को हमने अपने अनुकूल बना लिया, हमारे विचारधारा के अनुरूप धर्म हो ये प्रयत्न किया, पर हमारे विचार धर्म के अनुरूप हो ये प्रयत्न नहीं किया। धर्म हमारे जैसे बनना चाहिए क्या, हमको ही धर्म जैसे बनना चाहिए, हमको ही धर्म जैसा बनना चाहिए, धर्म को अपने अनुरूप ढाला नहीं जा सकता। धर्म के कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपने सिद्धांत के अनुसार हम ढाल नहीं सकते, अपने सिद्धांतों को तो सब छोड़ देना चाहिए, और धर्म के सिद्धांत क्या कह रहे हैं उसको समझना चाहिए और उस पर चलने की चेष्टा करनी चाहिए, ये है। तो ऐसा ही करें, ये आगे ऐसा ना करें, अब ऐसा ना करें, धर्म को अपने अनुरूप ना बनाएं, धर्म के अनुसार हम बनते जाएं, और शुभस्य शीघ्रम, जल्दी जल्दी बनते जाएं। अब क्या जल्दी 55 के बाहर गए अब करके करेंगे कि भी क्या, अब शरीर तो साथ नहीं दे रहा है, 1 घंटा सामायिक में बैठे बैठो कहने से महाराज मन भटकता है, बैठना ही नहीं हो रहा है, कमर भी दुख रहा है, ये घुटने जो हैं आकड़ जाते हैं, झूम झूम आता है इधर झूम झूम करता है। और छोटी अवस्था में अगर दीक्षा ले लेते, धर्म पुरुषार्थ कर लेते, तो क्या ऐसा होता, नहीं होता। पर छोटी अवस्था में क्या कहा, देखेंगे बाद में देखेंगे, तो बाद कहते 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 यहाँ तक आ गए। अब धर्म इस अवस्था में भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो होगा भी नहीं, होगा नहीं है तो अब तो मनुष्य भाव गया, दिन डूब गया, जब तक सूरज था तब तक कुछ काम कर सकते थे, अवसर प्राप्त था, चांस मिल गया था, लेकिन हमने खो दिया। ऐसा खोना चाहिए था कि नहीं खोना चाहिए था, नहीं खोना चाहिए था, लेकिन महाराज आप बचपन में मिलते तो हम घर छोड़ते सभी लोग ऐसे ही कहते हैं, किसी से भी पूछो उनको छोड़ना न छोड़ना वो बाद की बात है, लेकिन आपने क्यों दीक्षा नहीं ली, आप जैसे साधु नहीं मिले इसलिए हमने नहीं ली। कब नहीं मिली, मिले बचपन में, और बचपन में हम मिलते तो आपके जो माँ बाप थे वो नहीं छोड़ते, वो कहते ये क्या उम्र धर्म करने का उम्र है क्या? धर्म क्या तुमको रोटी देता है क्या? धर्म से क्या पेट भरता है क्या? ऐसे विचारधारा, ये कितनी अज्ञानता की विचारधाराएं हैं, कितना बड़ा अंधकार है ये। सुन रहे हैं? हाँ, आपके बच्चे अगर घर छोड़ रहे हो तो ऐसा मत कहना। और शायद आप अपने बच्चों को इसलिए नहीं ले आते क्योंकि महाराज की वाणी को सुन करके हाँ उनको वैराग्य न हो जाए। महाराज का क्या भरोसा हमारे बच्चों को ले जाएंगे वो? ये तो मोह है। इस मोह से हम भी पार नहीं हो पाए और मोह के कारण से हम दूसरे को भी पार होने से नहीं दिया, रोक रहे हैं। रोकते समय किस कर्म का बंद होता है? अंतराय। कौन सा अंतराय कर्म का? लाभांतराय कर्म का। देखो, दीक्षा का लाभ होना था, केवल ज्ञान का लाभ होना था, मोक्ष का लाभ होना था, ऐसे जीव को आपने विघ्न डाल दिया। सम्यक दर्शन का लाभ होना था, उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने नहीं दिया। बेटा, पहला पासून हम जो करते आए हैं उसी को करना। धर्म क्या देता है? ये देव ये देते हैं, ये धारणा पहले पासून की धारणा। इसने जैन धर्म स्वीकार करने से हमको रोक दिया। और ये धारणा शास्त्र की धारणा नहीं है, जिनवानी की धारणा नहीं है, ये तो गली वाले की धारणा है। गली में जो सुनते हैं उन लोगों की बात को सुन करके हमने दो देव मान लिए। हमारे देव कितने हो गए जीवन में? दो नहीं, 200 भी हैं किसी किसी के। सब जगह जाएंगे वो, सब जगह सलूट करेंगे और सबसे मांगेंगे, क्या दिया, किस देव ने किस तारीख को कितना दिया ये तो बताओ। किसी डायरी में लिख के रखा है क्या, हमने 200 देवों को माना और इस ये देव आ गया, इसने ये दिया, इस देव आ गए, ये इसने पैसा दिया, उसने उसने हमारी शादी में मदद किया। लिख के रखे हो कहीं डायरी में किस देव ने क्या हेल्प किया? कुछ भी नहीं है, खाली खाली व्यर्थ करते हुए आ रहे हैं क्या? नहीं देंगे देंगे, और फिर किस दिन हम पूछते हैं किस दिन देगा वो, क्या देगा, कौन सा देव क्या देता है तो ये तो कहो, ये भी नहीं कह पा रहे, ये भी नहीं कह सकते हम कि कौन सा देव क्या देता है, कब देता है ये भी मालूम नहीं, अभी तक तो दिया नहीं, भविष्य में कब देगा ये भी गारंटी नहीं, और किसी को देते हुए दिखाई नहीं देते। दे सकते हैं क्या वो कुछ है? तो किस दृष्टि से आप उनकी मान्यता बढ़ा रहे हैं? व्यर्थ, ना समझ ना सोचे सोचे विचारे ही।
नाम कर्म के ये मनुष्य मिला है, यही भगवान ने दिया
है। ये और इनकी एक धारणा अलग ही है। ये और नई धारणा है। नाम कर्म दो प्रकार का, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म बंधता है तो हम मूक होकर, कुंठ होकर, लंगड़े होकर, अंधे होकर जन्म लेते हैं। शरीर हमारा लंगड़ा मिलता है, मूक मिलता है, अशुभ मिलता है, हमारा अंगोपांग ठीक नहीं रहते, चेहरा ठीक नहीं रहता, सुंदर नहीं रहता, ये अशुभ नाम कर्म का फल है। कर्म पहले बनता है, बाद में हमारे शरीर को बना देता है। हम इस भाव में सुंदर हैं क्या असुंदर? देखो, कहने का साहस नहीं हो रहा है, कौन सा कहें। सुंदर हैं क्या असुंदर? यदि सुंदर कहते हैं तो भगवान से पूछ लेते हैं, भगवान आपसे सुंदर हैं क्या? वो तो भगवान तो कहते हैं ये कोई सुंदर नहीं है।
गति में है, मनुष्य गति अति सुंदर है।
मनुष्य गति सुंदर है, मनुष्य गति में जो नाम कर्म का फल, शरीर नाम कर्म का फल आपको मिला है, वह सुंदर बना चुका है या असुंदर? हाँ, कैसे बनाया है शरीर को, सुंदर बनाया है क्या असुंदर? हम सुंदर बने हैं तो नाम कर्म के कारण से, असुंदर भी बने हैं तो नाम कर्म के कारण से। भगवान ने कहाँ बनाया? भगवान ने बनाया है ये कहेंगे तो ईश्वर ने बनाया है ऐसा कहने में भी क्या दिक्कत है? हाँ, 200 में से कौन से देव ने बनाया? फिर आपको सुंदर किसने बनाया? कौन से देव ने बनाया? देव बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो देव को किस कारण से इतना मान बैठे हैं? देखा देखी कि पहले वालों ने माना इसलिए हमने भी मान लिया, और सोचे विचारे भी ना मान लिया। सोचे विचारे भी ना, जरा सोचते कि भैया इधर आओ, तुम्हारा देखा देखी मुझे भी भाव हो गए, तुम उस देव को मान रहे हो, किस कारण से मानते हो? पूछ तो लेते। अगर वो कहता कि मुझे इस देव ने बहुत कुछ दिया है और देता रहेगा, देने की संभावना रहती है इसलिए मानता हूं, तो तुमको किसने किस तारीख को कितना क्या क्या दिया है ये तो बताओ। ये पूछते पहले, क्या देता है? शरीर सुंदर देता है या धन संपत्ति देता है, क्या देता है? इतना पूछने के बाद मान लेते तो कितना अच्छा था, लेकिन कहने मात्र से आपने स्वीकार कर लिया है देव को। कहने मात्र से हमने स्वीकार कर लिया है। कहने मात्र से स्वीकार कैसा किया? इसको दिया होगा तभी तो बोल रहा है, दिया होगा। ये पूछताछ नहीं की कि कब दिया है, ये पूछा नहीं, दिया होगा ये तभी तो ये बोल रहा है। ये झूठ बोलता है क्या? दिया तो होगा। ये नहीं पूछा कि तुमको कितना दिया, कब दिया, किस तारीख को दिया और किस किस तारीख को देने वाला है ये तो बताओ। और यदि तुमको तारीख फिक्स है देने वाला है तो मैं भी तारीख फिक्स करके उनकी उपासना करता हूँ, क्योंकि जिस तारीख को तुम्हें देने आएगा उस तारीख को तो हम नहीं ले सकते। हमको देने के लिए जब आएगा वो तो अलग से ही तारीख फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि फुर्सत भी तो चाहिए उस देव को, किस किस के पास जाए वो। सुन रहे? सावधान, आत्मा को जगाया जा रहा है, धर्म को जगाया जा रहा है, ज्ञान को जगाया जा रहा है। भौतिक सुख पाने के लिए क्या कोई देव आवश्यक है क्या? ये पहला तय करो, फिर बाद में देवों को मानो। भौतिक सुख पाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ, शुभ कर्म करना पड़ेगा। शुभ कर्म कौन कौन से? देव पूजा गुरु पास थे, फिर देव आ गए। देव पूजा से धन मिलता है, देव पूजा से धन मिलता है, यही तो हैमरिंग हुआ है अपना, बार बार हैमरिंग हुआ है। नहीं, इस पर चिंतन करते ही नहीं कोई, चिंतन करने को कोई नहीं जाता। वो जो सामने वाला कर रहा है, हमारे साथी जो कर रहे हैं, उसमें बस देखा देखी मतलब शामिल हो जाते। सोच करके कभी कोई काम किया है? महाराज जी पहले, बहुत पहले बताते तो हम भी करते, अब बता रहे हैं आप इसलिए करके देखेंगे, तो करके देखो। देखा देखी कुछ भी मत करो। ये कौन देता है पहला इसका अध्ययन करो। फिर बादों में देव की आराधना करो। देव की आराधना, दो प्रकार के देव हैं, रागी देव और वीतरागी देव। वीतरागी देव जो कुछ नहीं देते, ऐसी जो आपकी कल्पना है वो भी मिथ्या है। देव नहीं देते ये ठीक है, पर वीतरागी देव से कुछ नहीं होता कहना, ये बहुत बड़ी मिथ्या धारणा है। आज तक जो भी चक्रवर्ती बने वो किस देव के उपासक थे? वीतरागी देव के। तो वीतरागी देव ने दिया क्या उनको? वीतराग देव ने नहीं दिया, पर चक्रवर्ती पद जो मिला वो किससे मिला? वो उपासना का फल है। उपासना का फल मतलब देव देता है ऐसा नहीं, हमारी उपासना से वीतरागी देव आपको प्रसन्न होकर के चक्रवर्ती पद देता है, बिठा देता है, विजयी बना देता है, ऐसा नहीं। निर्दोष आत्मा है वो भगवान, निर्दोष आत्मा है, अनंत गुणशाली है। उन गुणों में मन लगाने से हमारी कषाय, हमारे भाव शुभ हो जाते हैं, कषाय मंद पड़ जाती है, और उस वक्त हमारे लिए ऐसे कर्मों का बंध होता है जो हमारे लिए वह कर्म आगामी भव में जाकर के चक्रवर्ती बना सकता है। लेकिन ये तो कहा है चक्रवर्ती ही बनना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं कि आप मुनि बने बिना चक्रवर्ती बनना चाहते हो। आज तक जो भी चक्रवर्ती बने हैं वे सभी मुनि बन करके ही बने हैं। चक्रवर्ती बनने के बाद भी मुनि बनते हैं, पर चक्रवर्ती बनने से पहले भी एक आध बार मुनि बनते ही हैं। गृहस्थ कोई भी चक्रवर्ती नहीं बन सकता। चक्रवर्ती बनते समय गृहस्थ जरूर रहता है, चक्रवर्ती पद पाते समय उस काल में जरूर गृहस्थ रहता है, लेकिन चक्रवर्ती पद पर जाने योग्य पुण्य को जो बांधता है वह गृहस्थ नहीं होता, वो मुनि होते। तो सबसे ज्यादा पुण्य का बंध कौन करते हैं? हाँ? मुनि महाराज ही करते हैं। सबसे ज्यादा पुण्य प्रकृति का बंध मुनियों को होता है। क्यों होता है? किस कारण से होता है? संयम के कारण से, पाप से बचते हैं, कोई परिग्रह नहीं रखते, इधर उधर की चिंता नहीं करते, विकल्प में नहीं पड़ते। जो अशुभ कर्म बंध का कारण है वो परिग्रह है, परिग्रह से ही दूर हो जाते हैं तो फिर परिणाम कैसे रहेंगे, भाव कैसे रहेंगे, उनके कैसे रहेंगे? शुभ रहेंगे। और एक गृहस्थ है, थोड़ा सा परिग्रह छोड़ देता है तो थोड़ा सा शुभ भावों में आ जाता है। तो इनको मुनि महाराज के क्वालिटी का पुण्य का बंध होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कषाय की जैसी जैसी क्वालिटियां हैं वैसी वैसे भावों की भी क्वालिटी बनती है। चतुर्थ गुण स्थान में एक कषाय चली गई, ये कौन सी? अनंतानुबंधी। और प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है, संज्वलन का उदय, तीन का उदय है। तीन के उदय वाला कुछ भी परिग्रह को त्यागा हुआ नहीं माना जाता, केवल वह संतोषी रहता है। पंच पापों के उत्पत्ति में कारणीभूत जो परिग्रह है, बाह्य वस्तु है, चेतना चेतन वस्तु है, इन्हीं के वजह से पंच पाप उत्पन्न होते हैं। इन पंच पापों को वह समझने लगता है कि ये पाप ही हैं और इनको छोड़ना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन छोड़ना चाहिए ये तो लग तो रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। तो ये अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का तीव्रोदय माना जाता है, जो कुछ भी छोड़ने के भाव नहीं आते, पुरुषार्थ नहीं कर पाता, लेकिन आस्था है, छोड़ने पर आस्था है, श्रद्धा है, ये श्रद्धा उसका सम्यक दर्शन है। परिग्रह छोड़ने से मुझे बहुत अच्छा होगा, परिणाम शुभ रहेंगे, धर्म होगा, इसके प्रति आस्था है, ये सम्यक दर्शन है। क्योंकि परिग्रह के कारण पापाश्रव होता है, पाप का बंध होता है, इस आश्रव तत्व से और बंध तत्व से मैं बच सकता हूं, ये श्रद्धा जो है ये तत्वों की श्रद्धा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, पंच पापों को त्यागने के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो पाप से भयभीत होकर के परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो परमार्थ माना जाता है, वो परमार्थ के परिणाम है, वो धार्मिक परिणाम है। पाप से डरकर, इससे पाप का बंध होता है, पाप के बंध से आश्रव से डर करके यदि पापों का त्याग करता है, परिग्रहों का त्याग करता है, तो फिर वह सम्यक दृष्टि है। और यदि उन पापों को पुनः पाने के लिए डबल व्याज के रूप में इतना देता हूं और एक हाथ से इतना देता हूं, दूसरे हाथ से इतना मिलना चाहिए, इस प्रकार की धर्म बुद्धि से, ये धर्म बुद्धि नहीं कहलाती, नकली डुप्लीकेट धर्म बुद्धि, इसको भी धर्म अगर समझ करके ऐसा करता है कि मैं इतना देने से इतना आता है, आशा के साथ ही धर्म करता है, कामना से धर्म करता है, धर्म की क्रियाओं को करता है। दान दे रहा है तो कामना के साथ दे रहा है, कैसे दे रहा है, ऐसे दान देने से ही मुझे अभी तक जो संपत्ति मिली है बहुत मिली है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हम दानी हैं। ऐसे कितने लोगों के विचार है दुनिया में, भगवान ने हमें सुखी रखा है, कैसे रखा है, हमने बहुत कुछ दिया है, हमारी कुल परंपरा से बहुत सभी हमारे दादा पिताजी सब दानी थे, और इसलिए हम भी दान करते हैं, ये दान का ही परिणाम है कि आज मिल रहा है हमको, और फिर पाने के लिए ही हम और करते रहते हैं। तो दादा ने और पिता ने, दादा का मतलब अजूबा, हाँ अजूबा, दादा का मतलब यहाँ पर भैया हो जाता है शायद अजूबा ने किन परिणामों से धर्म किया था क्या आपको मालूम है? नहीं है, परंतु दान की क्रिया का केवल अजूबा का अनुकरण किया है आपने। अजूबा बहुत सुखी थे, संपन्न थे, आपको इतना ही मालूम है कि सुखी क्यों थे, दान देते थे इसलिए सुखी थे, दान देते थे इसलिए संपत्ति आती थी, जितना देते थे उतनी संपत्ति आती थी। तो आपने दादा के अजूबा के परिणामों को नहीं देखा, क्रिया को देखा है, और क्रिया को देख करके क्या समझ करके रखा है कि वो देते थे इसलिए उनको आता था। तो इतना ही अनुकरण अगर करके आप दान देते चले जाएंगे तो आपके परिणाम अजूबा से अलग ही रहेंगे। अजूबा के परिणाम तो बहुत अच्छे थे, वो तो देते थे पर निष्काम होकर के देते थे, और इसलिए संपत्ति भी आती थी। कामना सहित अगर हो करके देते तो आता नहीं था, निष्काम हो करके देते थे इसलिए धन भी आता था। एक कामना और एक भावना, ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं। कामना जब हम करते हैं देते समय, रिटर्न आने की कामना करते हैं, तो इस समय हमारे परिणाम शुभ रहते हैं क्या अशुभ? अशुभ। तो अशुभ परिणाम के काल में पुण्य का आश्रय होगा क्या पाप का? फिर धन कैसे आएगा? धन आने वाला है कर्म के उदय से, धन आने वाला है पुण्य कर्म के उदय से। और आपने कामना से धर्म किया है, कामना से, तो कामना करते समय पाप बंधा था, लौट करके क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है, खाली है ना। हमारे परिणाम अगर कामना से भरे थे तो हम पाप ही बांध रहे थे। संसार के भोगों को भोगते समय जीव पाप बंद करता है क्या पुण्य बंद? पाप बंद, भोगते समय पाप बंद, और उन्हें भोगों को चाहते समय पाप बंद, और भगवान के सामने जा करके भगवान मुझे संपत्ति चाहिए इसलिए कर रहा हूं ये सब, इस समय में भी पाप बंद, और पाप बंद करके ही चले गए हैं और वो नहीं मिला, क्योंकि लौट करके उदय में क्या आया? पुण्य आया क्या पाप आया? पाप ही उदय में आया और वो नहीं मिला, नहीं मिलने से परेशान हो गए आप। ज्ञान तो है नहीं, चिंतक तो है नहीं, परेशान हो गए। धर्म करते करते आधी जिंदगी चली गई, मैं विश्वास के साथ कर रहा था, धर्म कुछ नहीं देता, भगवान कुछ नहीं देते, छोड़ो इसको। भगवान को भी छोड़ दिया, धर्म को भी छोड़ दिया, और फिर भगवान को ही छोड़ दिया तो हमारे पास भी कैसे आएंगे? महाराज भी क्या देने वाले हैं, वो भी तो धर्म का ही रास्ता बताते हैं, वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला, घर में रहना अच्छा है। तो ऐसे कितने ही लोग घर में बैठे हैं इन्हीं विचारों के कारण से, घर से बाहर नहीं निकलते, धर्म पर कोई आस्था नहीं उनको, ऐसे कितने लोग चाहिए? बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, शंट पर शंट लोग वैसे। सच्चे गुरु के मिले बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, सच्चे देव के मिले बिना सच्ची उपासना का मार्ग नहीं मिलता। किसकी उपासना करे, मार्ग नहीं मिलता, भगवान को देखते ही मार्ग मिल जाता है, गुरु को देखते ही ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिलते ही परिणाम बदलते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, ठीक ठाक होते ही तदयोग्य पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ सही होता है तो फिर पुण्य भी आता है। और ऐसा सही पुरुषार्थ करने वाला जब सही पुरुषार्थ करता रहता है, उस वक्त देखो कामना करता है क्या? कामना से धर्म करता है क्या? कोई भी उनकी धार्मिक क्रिया कामना से नहीं होती। ज्ञानी की, ज्ञानी का पुरुषार्थ, ज्ञानी का धर्म कार्य कभी भी कामना सहित नहीं होता। यदि कामना से होता ना, तो फिर तीर्थंकर पद पाने के 16 कारण भावना की जगह 16 कारण कामनाएं होती। इन 16 प्रकार की कामनाओं को करने से और इतने नरियल चढ़ाने से, इतने बादाम चढ़ाने से और इतने अक्षत पुंज चढ़ाने से ये फल निश्चित मिलता है। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा है क्या? नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं अच्छा नारियल चढ़ाएंगे तो अच्छे नारियल मिलते हैं, अच्छा बादाम चढ़ाएंगे तो अच्छे बादाम मिलते हैं, अच्छे नहीं खजूर ये खारी अच्छे छुहारा चढ़ाने से अच्छे छुहारा मिलते हैं, और कीड़े लगी हुई चढ़ाने से कीड़े लगी हुई ही मिलते हैं। चढ़ाने का कोई महत्व नहीं बताया है शास्त्र में, भावों का महत्व है। अंदर में बाहर में इतना बड़ा नारियल है, इतना बड़ा नारियल है, गोला उसके अंदर इतना बड़ा है, और भगवान के लिए इसको अगर चढ़ाऊं तो इससे बड़ा मिलेगा, तो ऐसा कहकर चढ़ाया। लेकिन भीतर में कामना है, मिले इससे बड़ा मिले, कामना है, मिलेगा क्या? तो गया कि नहीं, फालतू गया कि नहीं, वो बड़ा भी गया और छोटा भी नहीं मिला। हाथ में नहीं आया कुछ भी, चला गया। ऐसे कितनी बार हुआ है, अज्ञान के कारण से हमने धर्म किया तो ऐसा किया, हमारे सारे नारियल बर्बाद हो गए, चावल बर्बाद हो गया, बादाम बर्बाद हो गए, खारिक बर्बाद हो गए, समय बर्बाद हुआ, घंटे डेढ़ घंटे का, 16 दिन का समय षोडश कारण मनाया अच्छे अच्छे नारियलों से, सब बर्बाद हो गए, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ही आए, और जा करके फालतू ही पश्चाताप की, भगवान कुछ नहीं देते, धर्म कुछ नहीं देता। 16 वर्ष किया और उसके बाद भी जहां का तहां है हम। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कामना से तो होता नहीं वहां, यहाँ पर तो भावनाओं की पूजा चल रही है और भावनात्मक चल रही है, कामना तक तो है ही नहीं। 16 कारण कामनाओं को करो इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, ऐसा कहा है क्या शास्त्र में? भावना कहा है? भावना पवित्र होती है, कामना अपवित्र होती है। भावना बहुत बड़ी पवित्र दशा है। आत्मा में भावना करने के लिए बताया, किसकी भावना भाना? तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाना का मतलब तीर्थंकर भगवान के गुणों को गुणगान करना। तीर्थंकर प्रकृति के बंद के टाइम में जिस प्रकार के भाव होना चाहिए, उन भावनाओं को भाना। तीर्थंकर हम बने या न बने, परंतु तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए जो भाव चाहिए उनको भाना, उनको विचार में लाना, और उन विचारों से विशुद्धि बढ़ाना, इस विशुद्धि को चरम सीमा पर ले जाना। जब आप चरम सीमा पर ले जाएंगे और इन भावों के साथ मैं भी अपना कल्याण करूं और जगत के दुखी जीवों को भी ज्ञान का मार्ग बताकर इनको आत्मिक सुख प्रदान करूं, ज्ञान दे दूं, इस प्रकार तीव्र संकलेश परिणाम जब होते हैं विशुद्धि के साथ, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है। उस समय आप किसी केवली के सानिध्य में रहते हैं, उस समय होता है। आप वज्र वृषभ नारा सनन वाले होते हैं, उस समय होता है। आप सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, उस समय होता है। सम्यक तो के बिना तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध स्टार्ट होता ही नहीं। 25 दोषों से रहित तो जिसके पास सम्यक दर्शन है वो दर्शन विशुद्धि है, परंतु यहां तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। 25 दोषों से रहित हम सम्यक्तों का पालन करते हैं, इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, यहां तक सीमित नहीं। यहां दृष्टि की निर्मलता चाहिए, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। 25 दोषों से रहित तो हर कोई रहता है, और ऐसे कई लोग तीर्थंकर प्रकृति की भावना को भाते रहते हैं। तो 25 दोष जिनमें नहीं है उनको तो होना चाहिए था, उनको क्यों नहीं हुआ? उनको इसलिए नहीं हुआ उसके पश्चात जो क्रिया चाहिए वो नहीं थी। क्या नहीं थी? दृष्टि की निर्मलता। कैसी निर्मलता? यहां पर 16 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि तो निर्मल यही है कि वह 25 दोषों से रहित हो। इसके पश्चात कुछ नहीं चाहिए क्या? 15 में से एक और किसी को जोड़ लेना पड़ेगा, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 15 में से किसी एक को और लेना पड़ेगा साथ में, और उसके माध्यम से अपने दृष्टि को निर्मल बनाते हुए विशुद्धि को चरम सीमा पर ले जाना पड़ेगा। संकलेश के साथ मैं भी कल्याण करूं और जगत का भी कल्याण हो, इस प्रकार के परिणामों से दृष्टि निर्मल परिणामों को बढ़ाते बढ़ाते चरम सीमा पर ले जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन तो सबके पास होता है, भावना भाने वाले के पास, किंतु दृष्टि की निर्मलता में वो विजयी नहीं हो पाते। पच्चीस दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करने में तो सब विजयी होते हैं, पर अन्य किसी एक भावना को निमित्त बनाकर दृष्टि की निर्मलता को बढ़ाते बढ़ाते चरम सीमा पर जो ले जाना चाहिए, उसमें सफलता सबको नहीं मिल पाती। रैंक में आना चाहिए, वहां तो 100 का 100 मिलना चाहिए। कई विद्यार्थी कठिन विषय को लेकर के और अच्छा सर्विस करके उसके माध्यम से धन कमाने की भावना रखते हैं, सीए करना चाहते हैं। सीए कितना कठिन है, वो 3 साल का ही कोर्स है, लेकिन आपको 6 साल 7 साल 10 साल भी लग सकते हैं। और वो गणित का विषय है, उसमें जो अकाउंटेंसी है ना, बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन है, उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो गणित है। एक नंबर एक भी मिलाने में या घटाने में कम ज्यादा हो गया तो उत्तर गलत आता है, फेल। 1 साल और बैठो, विषय गया, हाँ? सब विषय देने पड़ते हैं, टोटल सभी विषय देने पड़ते हैं, ऐसा बताते हैं। जो दिया है उसको भी देना, कठिन है कि नहीं? और उसमें भी रैंकर होकर के निकल आना और कितना कठिन है। कटाकटी पास हो गए वो बात अलग है, रैंकर होकर के क्वालिटी के साथ बाहर आना ये कठिन है। भावों की जो क्वालिटी है ना, शुभ भावों की जो क्वालिटी है ना, वो अगर बन जाए तो तीर्थंकर आप बन सकते हैं। लेकिन कामना के साथ तो आज तक ना कोई तीर्थंकर बना ना बनेगा, भावना के साथ ही तीर्थंकर बनते हैं। भावना कैसे भाना, भा तो रहे हैं आप लोग, कैसे भा रहे हैं? तीर्थंकर पद प्राप्त ये दर्शन विशुद्धि भावना ये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा, ठीक है, इस पूजा के माध्यम से कितनी विशुद्धि बढ़ा सकोगे? स्वाहा कहते समय में भी हमारी विशुद्धि डाउन है और आसपास में बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं, ये क्या नारियल लाए हो, कहते तुम्हारी क्या अच्छी है। ये कषाय और है। मन की चंचलता और है यहाँ, इन सब से हट करके भावना में डूबने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। पूजा एक माध्यम है, ठीक है, भावना भाने के लिए, तो भावना भाना तो दूर रहा, ये द्रव्य ही नाना प्रकार के विकल्पों के कारण बनते जा रहे हैं। अरे तुम फूल नहीं लाए, बताओ, फूल में अटक गए, हमारी तीर्थंकर प्रकृति का बंध फूल में अटका हुआ है। अरे तुम बासमती चावल क्यों नहीं लाए? अरे आरती में तो ये घी तो दिखता नहीं आपका, ये तो तेल है, खोबरे का तेल लाए है। इस चर्चा में उलझन में पड़ गए हैं और इन उलझनों से तीर्थंग प्रकृति का बंध बहुत ऊंचा है, इनसे कोई मायना नहीं रखता। ये मत समझो कि इस प्रकार से पूजा करने वाले ही तीर्थंकर बनते हैं, पूजा बिल्कुल नहीं करने वाले भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, भावों से करते हैं। वो कैसे करते हैं देख लो, मुनि मुनियों को क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है? है। राजा श्रेणी को क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ? तो ये बताओ कि कहां लिखा है कि वो पूजा करते समय ही उनको बंध हुआ? कृष्ण को क्या बंध नहीं हुआ? हुआ। कृष्ण कहां पूजा करते समय बंध करते हैं, बंद किया? वयावृत्ति करते समय, वयावृत्ति की भावना को भाते समय, वयावृत्ति करते समय तो मुनि के पास रहेंगे, वो बाहर रहेंगे समूह शरण को छोड़ करके। तीर्थंकर के सानिध्य में बंद प्रारंभ होता है ना, तो समूह शरण में रहते ही बंद किया होगा ना, बंद का प्रारंभ। लेकिन किस निमित्त को बना करके दृष्टि को निर्मल बनाया? वयावृत्ति, मुनियों की वयावृत्ति, एक रोगी मुनि की वयावृत्ति, जिनको क्षय रोग जैसा रोग, भयंकर रोग हो गया था, उसके इलाज में उनका चित्त विशुद्धि को प्राप्त हुआ और संक्लेश हो गए। इस मुनि महाराज को ऐसा कैसा रोग हो गया है, ये इसको मैं ठीक करके रहूंगा। उस वेदना को देख करके, उस मुनि को देख करके, उनके परिणामों में दान देने के, औषधि दान देने के जो परिणाम हो गए, वहां पर जो दृष्टि की निर्मलता बनी थी, वो दृष्टि की निर्मलता कंटिन्यू रही और उन्हीं विचारधारा में बहते 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 नीमनाथ भगवान के सानिध्य में चले गए और वो बार बार याद आने लगे, इनको औषधि दान देना चाहिए, इनको औषधि दान देना चाहिए, इनका रोग ठीक ही होना चाहिए, ऐसा संकलेश परिणाम, शुभ संकलेश। जब नीमनाथ भगवान के सानिध्य में ऐसे शुभ संकलेश होने पर दृष्टि की जो उत्कृष्ट निर्मलता बन गई, वहाँ क्वालिटी प्रकट हो गई। जब क्वालिटी प्रकट हो गई तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनके सानिध्य में प्रारंभ हो गया। और एक बार यह बंधना प्रारंभ हो जाता है, रुकता नहीं, निरंतर बंद। कब तक? जब तक वह जीव सम्यक दर्शन से युक्त है तब तक बंधेगा, और सम्यक तो से च्युत हो गया तो बंद रुक सकता है, और ऐसा भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करते करते, सम्यक्त के अवस्था में थे, बंद करते करते सम्यक्त से जब वो च्युत होंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। उस समय, उतने समय के लिए, जितने समय के लिए वो सम्यक्त से च्युत होते, तो ऐसा च्युत होना तो बीच में कभी नहीं होता। जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, होना प्रारंभ हो गया, तो उनको मरण समय के अंतिम समय तक बंद रुकता नहीं, बंधता रहता है। और फिर च्युत भी होता है। कब? मरण से पहले सम्यक तो छूटेगा, मरण होगा, मरण के साथ निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। कहां? यदि नरकायु को बांधा हो तो ही सम्यक से च्युत होने का प्रसंग है। अगर नरकायु का बंध नहीं किया है तो सम्यक से भी वह च्युत नहीं होगा। हाँ, ये भी विकल्प इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वह क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो फिर सम्यक्तु से भी च्युत नहीं होगा। अगर क्षायोपशम सम्यक्तु के साथ बंद किया हो तो हाँ, नियम से नरकायु का बंद किया है तो नियम से जाते समय नरक विग्रह गति में जाते समय मिथ्यात्व से सहित ही रहेगा, सम्यक्तु से रहित ही रहेगा। वहां जाने के बाद पर्याप्तियों को पूर्ण करने के बाद जन्म के अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। सम्यक दर्शन पुनः प्राप्त हो गया तो अब वह च्युत नहीं हो सकता। एक बार हो गया, हो गया, नरक जाते समय हुआ। अब वहां पर आयु कितनी है? बहुत लंबी आयु होती है, कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा सागरोपम, कितने ही सागरोपम की आयु होती है। तो एक बार सम्यक दर्शन वहां जाने के बाद उत्पन्न हो गया तो फिर च्युत नहीं होगा वो। फिर आकर के मनुष्य गति में जन्म लेंगे तो यहां पर पंच कल्याणक होंगे, भरत क्षेत्र की अपेक्षा से पांच कल्याणक, पांच कल्याणक। किसके माध्यम से पांच कल्याणक होंगे? देवों के माध्यम से। मनुष्य कोई पांच कल्याणक नहीं करते। तीर्थंकरों के वैभव को प्रदर्शित करने वालों, प्रदर्शित करने की क्षमता मनुष्यों के पास में नहीं है, मनुष्यों के पास नहीं, देवों के पास है। और देव ही क्यों आते हैं? तो मनुष्य देवों की अपेक्षा से वैभव में बहुत 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 पीछे है। अधिक से अधिक वैभव वाले मनुष्यों में कौन है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती से असंख्यात गुणित वैभव वाला इंद्र होता है, एक देव होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति तो तीर्थंकर प्रकृति है, वह ऐसे वैभव को आकर्षित करने की उसमें शक्ति है। जो वैभव वाले भौतिक संपदा वाले हैं वो सब आकर्षित होते हैं। उनके पास सम्यक दृष्टि जीव जो वैभववान हैं वो सब आकर्षित होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव, उनके पास इतना वैभव भी नहीं होता, और हो तो भी वो आते नहीं है। आज देखते हैं कि नहीं, कितने ही करोड़पति तीर्थंकर के समोशरण में नहीं जा सकते। वो किस काम का? वो धन, वो संपदा किस काम का है? पुण्य का फल है, मानते किसी भाव में पुण्य किया होगा, यहां पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करने में तो वो इकट्ठा हो गया, पर वह वैभव पाप का ही कारण है ना। उसको लेकर के धर्म अगर याद नहीं आता है, उसके वजह से उसको निमित्त बनाकर धर्म याद नहीं आता है तो पुनः डबल पाप कर्म का बंध होता है। और ये वैभव आया तो बहुत अच्छी तरह से आया है, आते समय हमको खुश करके आया है और जाते समय दुखी बना करके जाएगा। दुखी बनाकर कैसा जाएगा? जब हमारे पास मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो हम धर्म को भूल जाएंगे, धर्म को भूल जाएंगे तो वह संपत्ति धर्मात्मा के पास टिकती है, अधर्मात्मा के पास ज्यादा समय टिकती नहीं, क्योंकि अधर्मात्मा के परिणाम सतत अशुभ 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 अशुभ। धन आने पर धन का मद आ गया, ज्ञान आने पर ज्ञान का मद आ गया, बल आने पर बल का मद आया, प्रभुत्व आने पर प्रभुत्व मद आया। कितने मद हैं? 8। इन मदों का संबंध मिथ्यात्व के साथ है क्या सम्यक्त्व के साथ? मिथ्यात्व के साथ। सम्यक दृष्टि 8 मदों से रहित रहता है और मिथ्या दृष्टि जीव 8 मदों में लिप्त रहता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी है, अनजान है, कुछ जानता नहीं, और इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव कभी चक्रवर्ती बनता नहीं, क्योंकि परिणाम ही हमेशा अशुभ रहते हैं और अशुभ परिणामों से पाप एकत्रित होता रहता है। किसी थोड़ी बहुत पुण्य कर्म के उदय से करोड़पति बन गए, बन गए, पिछले का कोई पुण्य का उदय होगा, लेकिन इस भव में अज्ञान है ना। धर्म रहित परिणाम, अशुभ परिणाम सतत चल रहे हों तो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। लक्ष्मी कहती है, हम तो जब तक हैं तब तक हैं, फिर तुम्हारा टाइम हो गया तो हमारा भी टाइम हो गया। हाँ, वैभव का भी समय है, वैभव का भी समय है, लक्ष्मी है वो। लक्ष्मी कहती है, हमारा टाइम तब होगा जब तुम्हारा टाइम हो जाएगा। तुमने बांधा है कितने समय का स्थिति बंद बांधा है, तब तक हम रहेंगे, बाद में जाएंगे। तो स्थिति बंद को तुम घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, और बढ़ाने का कोई माध्यम है ही नहीं, क्योंकि रज पच गए हैं। मैं करोड़पति किसी के सामने नहीं जाऊंगा, भगवान से बड़ा बन गया, धन मद आ जाता है, धर्म से दूर हो गया, क्योंकि धर्म पर विश्वास नहीं, धर्म से दूर हो गया। जो धर्म से दूर होगा, जो सम्यक्त्व से दूर होगा, उसके पास लक्ष्मी बच सकती है क्या? महाराज बचती तो है, कई लोग ऐसे हैं तो टाइम नहीं हुआ है इसलिए बची है लक्ष्मी। अभी टाइम नहीं हुआ है ना जाने का, तो इसलिए बची है। तो स्थिति बंद अधिक होगा इसलिए बची है, स्थिति बंद खत्म होने के बाद लक्ष्मी तो बचेगी नहीं, उसी तारीख उसी क्षण निकल जाएगी। ये सत्य है क्या नहीं? इस पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं? अपने जीवन को विश्वास के साथ जीना है, ये सिद्धांत ही सत्य है, जिस सत्य का उद्घाटन ऋषभनाथ भगवान ने भी कहा और उनके पश्चात जन्म लेने वाले अजीतनाथ भगवान ने भी यही सिद्धांत सत्य है ये कहा है। और ऐसी तीर्थंकर 2400 की परंपरा से यही बात चली आई और आचार्यों की परंपरा से फिर चली आई, फिर पंचम काल में यहां तक कोल्हापुर तक आई। और इस पर विश्वास करना पड़ेगा क्या नहीं? ये भगवंतों की वाणी है, इस पर विश्वास लाना पड़ेगा। सम्यक्त्व को छोड़कर नहीं जीना, लक्ष्मी बनी रहेगी अंतिम समय तक। अगर नहीं बनी रहती है तो समझ लेना सम्यक दर्शन तो है, धर्म तो है, मेरे पास धर्म से बढ़कर के कौन सा वैभव है? धर्म रहेगा तो शुभ परिणाम अवश्य रहेंगे, शुभ परिणाम रहेंगे तो लक्ष्मी को बैठो उठो कहने की जरूरत नहीं, इससे पुण्य आएगा, लक्ष्मी तो मेरे पास निवास करेगी ही, मुझे कुछ नहीं कहना पड़े। धर्म मेरे पास है तो लक्ष्मी को बैठो उठो ऐसा कुछ भी कहना नहीं पड़ता। धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। और हमारी रक्षा, हम तो समझते हैं हमारी रक्षा तो भौतिक सुख से है, भौतिक संपत्ति से है, शारीरिक सुख संपदा से है, इंद्रिय सुखों से है, ये हमारी रक्षा समझते हैं हम, ये हमारी रक्षा नहीं है। ये भौतिक भोगों को भोगना दुख है, ये सुख नहीं, असली सुख नहीं, इसको दुख माना है। लेकिन भौतिक संपत्ति के होने से हम सुखी, उसके जाने से हम दुखी, ये परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव को होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को ये परिणाम नहीं होते ऐसे। सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे परिणाम होते हैं, भौतिक संपत्ति चली जाती है तो बहुत अच्छा है, भौतिक संपत्ति चली गई, अब भोगने के लिए कुछ नहीं रहा, ये बढ़िया हो गया, हमारे परिणाम अब शुभ में बचे रहेंगे। ऐसे ही परिणाम होना चाहिए क्या? रोने धोने के परिणाम होना चाहिए। 1 किलो सोना था घर में और चोर कोई ले ही गए तो रोओगे? सम्यक दर्शन रूपी धर्म को कोई चुरा सकता है क्या? धर्म को कोई चुरा सकता है क्या? नहीं। धर्म की चोरी हो गई तो रोना चाहिए, और चोरी होती नहीं। रत्नत्रय की चोरी कोई कर नहीं सकता। हाँ, हम उस वैभव को पटकना चाहिए, हम पटक सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन इसको उठा करके कोई दूसरा व्यक्ति ले जा नहीं सकता। क्या ले जा सकता है? आपके सम्यक दर्शन की चोरी किसी ने आज तक किया है क्या? नहीं किया। लेकिन धन संपत्ति की चोरी बहुत बार हुई है, और जब चोरी हुई थी उस समय आपके परिणाम कैसे थे? सत्य बोलना, शुभ मत बोलना। हैं? अशुभ होते हैं कि नहीं? 1 किलो सोना क्या कम है? कौन आया? किधर से पता चला? कैसे ले गया? कौन ले गया होगा? एक कुत्ते को बुलवाना चाहिए, कहाँ गया वो? इधर से गया कि इधर से गया? वो पकड़ेगा। खबर देना चाहिए पुलिस स्टेशन में, हमारे यहाँ सोने की चोरी हो गई है, रिपोर्ट लिखवा दिया। वहां लिखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, और कुत्ते को लेकर के घूमने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुत्ते को भी क्या मालूम कौन ले गया? जाते समय देखा तो देखा तो है ही नहीं। नहीं महाराज, वो तो सूंघते सूंघते पकड़ लेता है, तो सूंघते सूंघते अन्य किसी को पकड़ लेगा तो क्या करोगे? भरोसा करोगे उन पर? ऐसा भी कई बार हुआ है, होता है कि नहीं? वो कुत्ता किसी के कपड़े को मुंह से पकड़ करके खींचने लगा, और आपने समझा कि यही चोर है, और उनको पकड़ करके परीक्षा की गई तो वो तो कहता है कि हमको मालूम तक नहीं, ये कुत्ता हमको क्यों पकड़ रहा है, पता नहीं हमको क्यों पकड़ रहा है ये। तो फिर आप शंका में आ गए, तो कुत्ते पर भी विश्वास नहीं हुआ। शंका में आ गए, अरे ये तो व्यक्ति निर्दोष दिख रहा है, ये शायद ये नहीं है, ये कुत्ता कुछ गड़बड़ कर रहा है, अभी सही चोर को पकड़ नहीं रहा है। फिर शंका में आते हैं अपन, चोरी गई गई, काय को रिपोर्ट लिख रहे थे, काय को? नहीं नहीं, मिलने की संभावना रहती है महाराज, मिलने की संभावना रहती है, लेकिन यदि मिल भी जाएगी तो उससे क्या शुभ परिणाम होने हैं? भोग के परिणाम ही होना है ना, दान के परिणाम होना है, वो भी नहीं। महाराज एक किलो सोना कैसे दान दे दें? त्याग के भाव, दान के भाव, शुभ भाव, वो तो होना नहीं है। और एक किलो सोना तो मिल गया वापस, मिल गया, मान लो मिल भी गया, तो उससे पुनः भोग के परिणाम रहते हैं और उसकी रक्षा के परिणाम रहते हैं। रक्षा के परिणाम हिंसानंद रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान मिलने के बाद रौद्र ध्यान ही शुरू होता है, जाने के बाद रौद्र ध्यान था, गया 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 गया, इष्ट वियोग, अर्थ ध्यान, इष्ट वियोग। और चोर आया था, ले गया था, ये अनिष्ट संयोग, उस समय अर्थ ध्यान, मिलने पर अर्थ ध्यान। ये बाह्य वस्तु, जड़ वस्तु, ये हमको ठीक रहने नहीं देता है, भावों को बिगाड़ ही देता है, जिसके वजह से हमारे भाव बिगड़ते हैं उसको धर्म का साधन मत समझना, उसको सुख का साधन मत समझना, वो दुख का ही साधन है, भौतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। हमको भौतिक रूप से भी अशुभ संकलेश बना देता है और धार्मिक रूप से तो हम आर्त रौद्र ध्यान करके धर्म ध्यान नहीं कर पाए, धर्मात्मा नहीं बना पाए, सहयोग नहीं दे पाया वो। ये भौतिक सुख है, इस भौतिक सुख में सम्यक दृष्टि जीव कैसे रहता है? ऐसा रहता है, ये भौतिक सुख धर्म का साधन है, ये वास्तविक सुख का साधन नहीं हो सकता। इसको भोगने में पाप बंध होता है और इसके त्याग में धर्म होता है, शुभ परिणाम होते हैं, देने में शुभ परिणाम होते हैं। इसी देने के लिए मिला है, धन किसके लिए मिला है, किस लिए मिला है? दान के लिए मिला है। क्या उसमें डूबने के लिए मिला है? धन दान के लिए मिला है। तुम्हारा सभी दान में ही दे दें तो सभी देव, ये कौन कह रहा है? सभी देते हैं तो बहुत अच्छा, उत्कृष्ट बात है, लेकिन कुछ तो दे उसमें से। धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाए, कहीं से, कहीं न कहीं से मंगलाचरण तो हो जाए। धन मिला और दान नहीं दिया तो मनुष्य जीवन बेकार है, बहुत बेकार है। तो सभी भोगों में ही गया ना, तो आपने शुभ क्या किया? सारा धन अगर अशुभ में ही गया, अशुभ परिणामों में ही चला गया, तो शुभ परिणाम तो किया नहीं, अब अगले भव में तो समस्या है। महाराज अगले भव को कौन जाने? तो कोई नहीं जानता, भगवान जानता है और आप भी जानेंगे, लेकिन अभी तो नहीं जानेंगे। भविष्य में जानना तो तुमको ही है, लेकिन आप भविष्य को अभी नहीं जान रहे हैं, भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं। जीवों को धर्म पर विश्वास नहीं आता, इतना विषयों में पागल हो गया है, धन संपत्ति वैभव में इतना पागल बन के घूमता रहता है। शुभ परिणाम भी मालूम नहीं, अशुभ परिणाम भी मालूम नहीं, शुभ कैसे होते हैं, कब होते हैं ये भी पता नहीं, अशुभ कैसे होते हैं, कब होते हैं ये भी पता नहीं। जीवन तो अज्ञान में, अंधकार में जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। एक दिन फुग्गा फूट जाता है, अंदर की हवा विलीन हो जाती है आकाश में, बस इतना ही जीवन है हमारा। ये फुग्गा आज न कल फूटने वाला है, जिसके पीछे हमने इतना अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान किया, दान देने के भाव नहीं आए, और जाते समय इतना तो करना चाहिए था आपको, कि उसको साथ ले चले एक किलो सोना, इतनी मेहनत से सुरक्षित रखा है, अंतिम मरण के अंतिम क्षण तक सुरक्षित रखा है, तो सोने से कहो मेरा अंतिम क्षण अभी आ रहा है, साथ चलना है, साथ चलना है, निमंत्रण देना उसको, जब मैं यहां से चलूंगा ना तुम साथ चलना। वो कहता है मैं साथ नहीं चल सकता और तुम्हारे पास जो बैलेंस था वो खत्म हो गया है, वहां भी नहीं और यहां भी नहीं, और यहां कुछ दान देते तो वहां भी होता और यहां भी होता, लेकिन दान देने के बाद भी मैं आ नहीं सकता था। दान दिया है वो नया कुछ आपको मिलेगा, लेकिन मुझे जो यहां छोड़ के जा रहे हैं, मैं जड़ वस्तु तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। एक परमाणु को भी जाक लेकर के जा नहीं सकता, एक किलो छोड़ो सोने का, एक परमाणु साथ ले चलो सोने के परमाणु को, एक एक परमाणु एक साथ ले चलना है। स्वर्ग में वो एक परमाणु ले जाओगे तो वहां के देव देखेंगे क्या क्या लाए हैं यहाँ, अरे ये क्या साथ में लाए हो, तो सोना, इतना ही क्यों लाए। स्वर्ग की संपत्ति को मरण करके यहां आते समय उसको नहीं ला सकते, मनुष्य गति की संपत्ति को स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। अगर ऐसे ले जाने का कोई कोई मार्ग होता या कोई नियम होता ना, तो स्वर्ग की संपत्ति यहाँ आ जाती हुई दिखाई देती और मनुष्य की संपत्ति वहां जाती हुई दिखाई देती, ऐसा दिखता है क्या कहीं? स्वर्ग की संपदा यहाँ नहीं आती, मनुष्य गति की संपदा वहां नहीं जाती, ये सत्य है। ये संपत्ति भी देखो पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, लेकिन जब तक पुण्य का उदय है तब तक ही साथ देती है, और जाते समय पुण्य का उदय शेष रहता है तो भी साथ नहीं आती। क्यों? आप क्षेत्रांतरित हो रहे हैं, पुण्य जबरदस्ती आपके साथ नहीं चलता। वहां जाने के बाद मिल सकती है, वो तो नया पुण्य का उदय, लेकिन यहाँ की संपत्ति तो यहीं पड़ी रहेगी। यही यहाँ की संपत्ति यहीं पड़ी रहेगी, इसलिए इस संपत्ति में मूर्छित नहीं होना, इसको देने के भाव रखना। जीने जीते जी बीच में दान के भाव नहीं भी आए तो अंत में तो कम से कम मैं मरण कर रहा हूं, वैसे ही ये साथ में आने वाला नहीं है कह करके अंत में तो कम से कम दान के भाव जागृत करो और उसी उसको किसी को दे करके चले जाओ, निकल जाओ, पुण्य साथ आएगा, ये संपत्ति बैलेंस में लिख करके आएगा, पुनः बैलेंस होगा, चार्ज करके जाओ। हाँ नहीं, मिले या ना मिले, लेकिन वैसे ही यहीं पर पड़ा रहने वाला है ना, तो जाते समय किसी धर्म को दान दे करके, धर्म भाव से दान दे करके, धर्मात्माओं का कल्याण हो, धर्म आयतनों का विकास हो, धर्मात्माओं को ये लगे और धर्म आयतनों का विकास हो, उसके लिए दे दो।
हाँ कमाते हैं, कुछ भी सोचते नहीं है, दान भी करते नहीं है और रख के चले जाते, तो रखा हुआ दान का क्या होगा, वो चीज कहाँ जाएगा?
रखा हुआ दान का, धन का, रखा हुआ धन का क्या होगा? उसका मालिक दूसरा जीव बनेगा।
गारंटेड बनाया नहीं उसको, गारंटेड उसके लिए किसी ने बनाया नहीं,
गारंटेड बनाया नहीं, वारस। हाँ देखो, वो संपत्ति यहाँ रख करके वो चले गए, किसी को दिया भी नहीं, और एकाएक मर गए मान लो एक्सीडेंट में, और संपत्ति किसी न किसी की होती है कि नहीं, वो बाद में किसी के नाम से, घरों घर में कोई उनके पीछे कोई हो उनके नाम से होता है कि नहीं, वो हाँ। तो देखो वो उसी का होगा जिसका पुण्य होगा, जिसका पुण्य होगा उसी का होगा, और जिनका पुण्य नहीं है उसका नहीं हो सकता। अगर सरकार की पुण्य नहीं है तो सरकार की वो संपत्ति नहीं हो सकती, वो आपके परिवार की ही होगी, और परिवार का पुण्य नहीं है तो सरकार का पुण्य है तो सरकार की हो जाएगी। उसको छीनने की शक्ति जबरदस्ती में किसी की होती नहीं है, छीनने वाला भी यदि पुण्यात्मा हो तो ही छीन सकता है, उसके पास भी छीनने के लिए पुण्य चाहिए। कोई चोर है, चोरी करने के लिए जाता है, उस दिन पुण्य नहीं है तो चोरी मिल सकेगी क्या, खाली लौट आता है, और पुण्य हो तो उस दिन चोरी मिल जाती है, लेकिन कार्य किसका है, ये पाप का, तो पाप बंद करके आ रहा। अभी तो पुण्य के उदय में चोरी मिल गई, आपके पास धन आ गया, लक्ष्मी कहती है मुझे पाप के परिणामों से बलात्कार छीन करके लाए हो, लक्ष्मी कहती है तुम्हें दुखदाई बनूंगी, तुम्हें मैं दुखदाई बनूंगी कह करके वो दुख दे करके चली जाती है। चोरी से लाया हुआ धन कभी उसको सुख का कारण नहीं बन सकता, क्या बन सकेगा, पुण्य के उदय में मिला है, लेकिन पाप छीनते समय पाप के परिणाम थे, पाप के परिणाम से छीन करके लाए हैं तो लक्ष्मी पर बलात्कार हुआ है। लक्ष्मी पर बलात्कार हुआ है पाप की बुद्धि से, ईमानदारी से भी तो ला सकते थे, कोई सर्विस करते, कोई व्यापार करते, कोई उद्योग करते, कोई कार्य करते, तो कार्य करते समय में भी ये पुण्य फल दे सकता था क्या, नहीं। हाँ तो ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी शुभ भाव है, शुभ भाव पूर्वक भी पुण्य फल दे सकता है, और अशुभ भावों के काल में भी पुण्य फल दे सकता है, इन दोनों में कौन सा अच्छा है। शुभ भाव को रखते हुए ईमानदारी से धन संपत्ति को कमाना ये अच्छा है, यहाँ पर भी सुखी रहोगे, परभव में भी सुखी रहोगे, इसी को धर्म कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, इसी का नाम है। कमाते समय धर्म रहे, देते समय धर्म रहे, देखते समय धर्म रहे, उसका उपभोग करते समय धर्म जीवित रहे, उपभोग करते समय में भी वो सम्यक दृष्टि जीव कहता है कि इसका उपभोग मुझे करना पड़ रहा है, मुझे आशा नहीं, जीवित रहने के लिए मुझे इतना उपयोग करना पड़ता है, अन्यथा जीवित कैसे रहूं, मुझे इंद्रिय विषयों में कोई रस नहीं है, पर इंद्रिय ऋषियों का ग्रहण होता है। संपत्ति में मूर्छा भाव नहीं होता, किसको, सम्यक दृष्टि जीव को, पर चारित्र मोहनी कर्म के उदय में छोड़ने के भाव नहीं बन पाते, अंदर से हे भाव है उसके ग्रहण के प्रति, हे भाव छोड़ने के भाव हैं, लेकिन चारित्र मोहनी कर्म का तीव्रोदय होने से छोड़ नहीं पाता। जब उस तीव्रोदय को मंद करने के लिए प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, संस्कार डालना प्रारंभ कर देता है, बार बार त्याग के परिणामों का हैमरिंग करने लगता है, तो अप्रत्याख्यानावरणी कर्म भी अपने तीव्रोदय को छोड़कर रास्ता दे देती है कि आप जाओ और दीक्षा ले लो। तब रास्ता ऊपर के धर्म को करने के लिए रास्ता मिलता है और यह लक्ष्मी दूर हो जाती है, लक्ष्मी से स्वयं दूर होता है। लक्ष्मी उनको आओ तो आती है, बैठो तो बैठती है, जाओ तो चली जाती है। वो तो जड़ वस्तु है, जबरदस्ती पीछे नहीं लगती। चक्रवर्ती जब उन्होंने दीक्षा ले ली तो क्या ये कहें कि चक्रवर्ती का पुण्य इतना ही था, पुण्य खत्म होने से दीक्षा ले ली? पुण्य तो था, अभी 4 साल और षटकंड आगम के सुख को भोगना चाहे तो भोग सकता था, लेकिन वैरागी हुआ तो वैरागी के काल में तो पुण्य और दुगुनित होता है, लेकिन वह पुण्य क्या लक्ष्मी को जबरदस्ती बलात्कार बिठा करके उनको उपभोग कराएगी? नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी है, जड़ वस्तु है, हम हैं, आत्मा हैं, हम त्याग के परिणाम करते हैं तो दीक्षा भी ले सकते हैं, पर दीक्षा लेने के बाद भी वह पुण्य जो पहला था वो सतत रहता है, लेकिन पुण्य के फल को वो चाहते नहीं, इसलिए वैरागी बनकर तपस्या में लीन रहते हैं। अगर चक्रवर्ती दीक्षा लेने के बाद पुनः उसी वैभव को ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। क्यों? उसमें सुख नहीं है, ये पता चल गया है। सुख तो आत्मा में है, शाश्वत सुख की खोज के लिए उसका नश्वर सुख को त्याग दिया है। चक्रवर्ती ऐसा नहीं करेगा। समय 2:05:10 ये यहीं पर रह गया। देखो इसमें बताया था 4 घाती कर्मों को नाश करने पर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये 4 आत्मा के स्वयं के वैभव है। केवल ज्ञान असली लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी, और अनंत सुख वो असली सुख है, अनश्वर है, शाश्वत है। इस शाश्वत सुख को पाने वाले नश्वर लक्ष्मी को, सुख को, वैभव को त्याग करके ही पाते हैं। ये धर्म की परंपरा है। इस धर्म का उपदेश भारत देश में 24 तीर्थंकरों ने दिया है, उसी का आप सुन रहे हैं। कैसा जीवन जीना, जीवन जीने की कला सीखो, इसमें ही सार है, अन्यथा सब संसार है, संसार है। जिनवानी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी चैवंतो मा जग में जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र।